आरवी दिनकर जी को जाते देखती रही। जैसे ही वे ओझल हुए, आरवी ने खाने की ओर देखा और नम आंखों से खाना खाने लगी। दिनकर जी अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। राधे वहीं हॉल में था। वो उनके पास चला आया और बोला, मालिक कुछ चाहिए?
दिनकर जी,
नहीं राधे।
राधे,
बाहर की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने खा लिया खाना?
दिनकर जी,
खा रही है, खा लेगी, थोड़ा ज्यादा, जितना भी, पर खा लेगी। तभी राधे दिनकर जी के पास टेबल के करीब बैठते हुए बोला, एक बात समझ में ना आई मालिक। आप पहले कह रहे थे ये लड़की अयांश बाबा को बदल देगी, किस्मत ने मिलाया है इनको तो वो उन्हें जीना सिखा देगी, सुधार कर देगी, ये सब कहा आपने, और अभी आप बाहर कहकर आए हो कि खाओगी तभी यहां से भाग पाओगी, ताकत आएगी तभी लड़ पाओगी। आप उस लड़की को यहां रखना भी चाहते हो अयांश बाबा के लिए, और उसे यहां से जाने की राह भी दिखाते हो, ऐसा क्यों बोला उसको? अपना सर खुजाते हुए। ये सुनकर दिनकर जी मुस्कुरा दिए और बोले, वो तो मैंने यूं ही कहा ताकि वो खाना खा ले। और राधी, उस लड़की का यहां रहना या ना रहना, ये अब तुम्हारे अयांश बाबा के हाथ में है, और ये तो तुम भी जानते हो। अब आसान नहीं यहां से निकल पाना। हम निकाल दें या वो खुद जाए, यहां से निकलकर वो उसे वापस ले ही आएगा। आरवी ने थोड़ा खाना खाया और झोले से उठकर वापस मेन गेट वाली साइड चली गई और सोचते हुए खुद से बोली, बस एक बार यहां से निकल जाऊं, फिर तो यहां वापस आने से रहा। यहां से निकलकर सक्षम के बारे में भी पता लगाना है। पता नहीं कहां होगा, कैसा होगा। परेशान होते हुए, एक पुरानी मिल जिसमें थोड़ी बहुत ही लाइट थी, बाकी चारों ओर रात का घना अंधेरा फैला था। उस मध्यम सी रोशनी के बीच 5-6 गुंडे टाइप आदमी एक शख्स को घेरे खड़े थे, जो घुटनों के बल जमीन पर बैठा था, जिसके हाथ पैर मुंह सब रस्सियों से बंधे हुए थे, और वो अपना सर झुकाए दर्द से आह भर रहा था। तभी वहां मौजूद एक आदमी का फोन बजा, जो शायद उन गुंडों के ग्रुप का हेड था। उसने सबको शांत रहने का हाथ से इशारा किया और फोन रिसीव करते हुए बोला, जी साहब। थोड़ी सी बात कर उसने फोन काटकर जेब में रखा और अपने साथियों से बोला, शुरू हो जाओ, ऑर्डर आ गया, इसे फिर से खुराक देने का। ये सुनते ही रस्सियों से बंधे शख्स ने फट से अपना सिर ऊपर किया और ऊं मुंह से आवाज निकालते हुए करते हुए नामे सिर हिलाने लगा, जिसकी आंखों में बेबसी, आंसू, दर्द सब दिखाई पड़ रहा था। सबने उसकी ओर देखा। तभी उनमें से एक आदमी बोला, धीरू भाई, अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है और अब फिर से? हाँ, तो हमें यही करने के लिए पैसे मिले हैं। अगर जान प्यारी है ना, तो लग जाओ बेटा काम पर, वरना इसकी जगह तुमको बिठाने में हमको एक पल की भी देरी नहीं लगेगी, धीरू गुस्साएते हुए बोला। माफ करना भाई, वो आदमी कहता है, और फिर धीरू के इशारे पर सबने डंडे उठाए और उस शख्स को डंडों से पीटने लगे। मुंह कितना जोर से बांधा हुआ था कि चीखने चिल्लाने की आवाज भी उस शख्स की दबी सी रह गई। बस रुक जाओ, मारना नहीं है, जिंदा रखना है इसे अभी। धीरू के कहते ही सब रुक गए और वो शख्स बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी धीरू ने पानी से भरा जग टेबल से उठाया और उसने उस शख्स के मुंह पर जोर से दे मारा। वो होश में आ गया, पर उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, जो उसने बेहिसाब दर्द को सहन करने के लिए भींच रखी थी। धीरू उसके पास नीचे बैठा और अपने हाथों में उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, अरे होश में रह, होश में रहेगा तभी तो पता चलेगा दर्द का, जो तुझे देने के लिए हम सबने इतनी मेहनत की है, जिसके लिए हमें ढेर सारा पैसा मिल रहा है। अगर तू ऐसे बेहोश हो जाएगा और तुझे एहसास ही नहीं होगा इस सब का, और एहसास नहीं होगा तो हमारी रोटी छिन जाएगी। तेरी वजह से ही तो हम दाल रोटी खाने वाले पनीर खा रहे हैं, क्यों? सही बोला ना? हंसते हुए अपने साथियों की ओर देखते हुए, हाँ भाई सही बोला, कहते सब आदमी भी धीरू के साथ हंस पड़े। धीरू ने उस शख्स को झटके से छोड़ा और नीचे से उठते हुए बोला, चलो रे खाना लगाओ, इसको तो खुराक दे दी, अब हम भी पेट पूजा कर ले, पेट में चूहों ने भगदड़ मचा रखी है। और हाँ, ध्यान रखना इसका, ना बेहोश हो पाए और ना सो पाए। जमीन पर पड़े उस शख्स की ओर देखते हुए जो दर्द से सिसक रहा था, दो आदमी उसकी निगरानी के लिए वहां रुक गए और बाकी धीरू के साथ चले गए। अयांश अपने केबिन में चेयर पर बैठा था, तभी वहां विनित आ गया। विनित ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा, अंदर आ जाओ, मना करूंगा तो नहीं आएगा क्या? अयांश बिना उसकी तरफ देखे बोले। विनित अंदर आते हुए, अब दरवाजे तक आकर क्या वापस जाना, आऊंगा ही अंदर, वैसे ही घर क्यों नहीं गए? अयांश विनित की ओर देखते हुए, जवाब पता होते हुए भी सवाल करना जरूरी है? विनित अयांश की पास वाली चेयर पर बैठते हुए, हाँ,
क्योंकि आज तो आधा घंटा लेट है। देख 11 बजने वाले हैं। अपनी घड़ी अयांश के सामने करते हुए अयांश ने विनित का हाथ साइड किया और चेयर से उठा और जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। जाता तो देर रात ही हूं, अपने हाथ पैंट की जेब में रखते हुए विनित उठकर अयांश की तरफ गया और उसके पास दीवार से सटकर हाथ बांधे खड़ा होकर बोला, कमाल की बात है ना, कोई दूसरा भी हमें दर्द देता है और फिर हम खुद को भी दर्द देते हैं। दर्द देने वालों को दर्द देना समझ आता है, पर खुद को भी दर्द देना? अयांश विनित की ओर मुड़ा और कहा, ये समझ में कभी नहीं आएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी समझ से ही बाहर है, तो क्यों अपनी समझ लगाते हो? विनित, मान लिया मेरी समझ से बाहर है, तू भी और तुम्हारी बातें भी, तो तू ही बता दे मुझे क्या चल रहा है। ये जो तू कहता है मैं वो कर देता हूं, कभी वजह भी नहीं पूछता और ना पूछनी मुझे, तो जो बोले मैं वो कर सकता हूं, पर नहीं देखा जाता तुझे ऐसे अयांश। क्या जो तुम कर रहे हो, जैसे तुम जी रहे हो, उससे तुझे सुकून है? सवाल भरी नजरों से अयांश को एकटक देखते हुए ये सुन अयांश एक पल तो खामोश हो गया और दूसरे ही पल अयांश डेविल मुस्कान मुस्कुराते हुए, हाँ सुकून ही है मुझे, बहुत सुकून, और मैं ठीक हूं, सो अपनी सवालबाजी बंद करो। विनित ये जवाब पाकर इरिटेट होते हुए बोला, क्या फायदा मेरे सवाल करने का, तुझे जवाब तो देने नहीं होते। अयांश, जब पता है नहीं जवाब मिलेगा तो क्यों सवाल करते हो? तुझसे ना कभी दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे, काश ये दोस्ती होती ही ना। 5 साल हो गए हमें मिले, पर लगता है ना तो मुझे समझ सकते हो और ना तो तुम मुझे समझ आए हो। अयांश वहां से जाकर वापस चेयर पर बैठ गया और बोला, तो तुझे कौन सा इन्विटेशन दिया था मैंने कि आकर दोस्त बन? क्या जरूरत थी बिजनेस पार्टनर से मुझे अपना दोस्त समझने की? ना मैंने आकर तुझसे दोस्ती मांगी और ना तुझसे बोला कि मिस्टर विनित मुझसे दोस्ती करोगे। विनित अयांश की ओर आते हुए, तो मना कर देते, बिजनेस पार्टनर ही रहो कह देते, सिर्फ बिजनेस ही संभालता मैं, तेरे कारण नहीं, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुझे दोस्त मान बैठा। अयांश हंसते हुए, तो अब मुझे क्यों दोष दे रहे हो, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, कुल्हाड़ी पर तुमने पैर मारा है, सो भुगतो। दोस्ती या दुश्मनी लोग सोचते हैं कि उन्हें मेरा क्या बनना है, मेरे फेवर में है तो दोस्त, मेरे अगेंस्ट है तो दुश्मन। यू नो अयांश, मेहरा सिर्फ रिटर्न देता है, साथ के बदले साथ और दर्द के बदले दर्द, एटीट्यूड वाले लहजे में। विनित अयांश की ओर आते हुए, यस आई नो, गिने चुने कुछ ही लोग हैं तेरी पर्सनल लाइफ में, बाकी तो सारे प्रोफेशनल में आते हैं, और मैं तो दोनों में आता हूं ना, इसीलिए कुछ बताता है मुझे, और बहुत कुछ नहीं, कुछ को ही तेरा प्यार और साथ नसीब होता है, बाकियों के हिस्से में तो नफरत और दर्द ही आता है। अयांश, हाँ तो जो जैसा बोएगा वैसा तो पाएगा ना, और मेरे लिए सिर्फ दो ही लोग इंपॉर्टेंट हैं, औरों से मुझे मतलब भी नहीं, ये तुम जानते हो। बिना विनित की ओर देखे, विनित अब तो तेरी जिंदगी में उन गिने चुने लोगों में भी गिरावट आ गई है ना, एक बहुत ही खास खटका, कहाँ रखा है उसे?
ये सुनते ही अयांश चेयर से उठ गया और विनित की कॉलर पकड़ते हुए बोला, अपनी हद में रहे हो मिस्टर विनित, हद में, हद पार मत करो, जितना मैं चाहता हूँ उतना ही कोई मेरी लाइफ में घुसता है, यू नो, सो डोंट क्रॉस योर लिमिट। विनित, मेरी जान, दोस्ती भी ऐसी होती है क्या? ये सुन अयांश ने कॉलर छोड़ विनित को पीछे की तरफ झटक दिया और खुद टेबल पर हथेली रखकर खड़ा हो गया। विनित संभल कर बोला, ओ हाँ मैं तो भूल गया, अयांश मेहरा से जो दोस्ती है अलग तो होगी ही ना, खुद की तकलीफ की एक उफ तक मुझ तक आने नहीं देता और मुझ पर आए मुश्किल तो ढाल बनकर खड़े हो जाते हो, खुद में और मुझ में इतना डिफरेंस क्यों, मुझे भी तो मौका दो, या बचपन की दोस्ती 5 साल की दोस्ती से ज्यादा खास होती है? एक तक अयांश की ओर देखते हुए। तभी अयांश चेयर से अपना कोट उठाते हुए, चलता हूँ घर, वाकई में देर हो रही है, दादू से कहा था आकर मिलता हूँ। ये सही है बात, बीच में छोड़कर भाग जा करते हो अयांश मेहरा, विनित अयांश की ओर देखते हुए बोला। ये सुन अयांश विनित की ओर देखते हुए कहता है, भाग नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ, कल ही शादी हुई है मेरी, है ना, मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही है, अब तुम्हारी आरवी भाभी को इंतजार करवाना अच्छी बात तो नहीं, मुस्कुराते हुए। और सुनो, दोस्ती दोस्ती होती है, बचपन की या कुछ सालों की कोई मायने नहीं रखता है, बस निभाने वाला सही होना चाहिए, और जो तुमने बहुत अच्छे से निभाई है और ऐसे ही निभाता रहे, मेरे अंदर झांकने की कोशिश करेगा तो जलकर राख हो जाएगा, और अभी तुमने कहा ना तुझ पर मुश्किल आए तो मैं ढाल बन जाता हूँ, तो बस मैं ही मेरे और तेरे बीच खड़ा हूँ, तेरे लिए जान दे भी सकता हूँ और अगर फालतू बकवास की तो तेरी जान ले भी सकता हूँ। इतना कह अयांश दरवाजे की ओर बढ़ा कि विनित बोला, जलन होती थी मुझे तेरी और उसकी दोस्ती से, उसकी जगह लेना चाहता था, वो तेरी हर बात में शामिल रहता था, बचपन से साथी था ना, और स्पेशल भी, तो सोचता कि क्या मुझे वो सब नहीं मिल सकता है, मैं भी तो दोस्त हूँ। पर एक ही पल में जब जाना कि उसने गद्दारी की है, तो मुझे मेरी उस सोच और उस चाह से नफरत हो रही है। नहीं जानना मुझे कि उसने क्या किया, नहीं लेनी उसकी जगह, बस जितना भी रख, जितना भी समझ, बस अपनी जिंदगी में रख, और कुछ नहीं चाहिए। जताता नहीं, बताता नहीं तू, पर मुझे ये दोस्ती चाहिए। मुड़कर अयांश की ओर देखते हुए, अयांश की अभी भी उसकी ओर पीठ थी, वो बिना मुड़े बोला, चाहता है रहना तो रह, बस कभी उसके जैसा बनने या उसकी जगह लेने का मत सोचना, वरना क्या हालत होगी ये सोचकर भी तुम्हारी रूह कांप उठेगी। विनित ना में सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, मैं विनित ही ठीक हूँ और वहीं रहूंगा, पक्का, नहीं पूछूंगा आप कुछ भी, जब तू बताएगा कुछ भी तो खुद ही बता देगा, पता है मुझे, मैं वेट करूंगा, कोई ना, वेट करूंगा, और वैसे भी तेरे सीने में बहुत सारे राज छिपे हैं, और वो मैं जानूं, इतनी मेरी औकात नहीं। अयांश विनित की ओर मुड़ते हुए, बड़ी जल्दी समझ गए, चलो अच्छा है, औकात में रहा करो, अब जाऊं या कुछ और पूछना है? विनित, पूछना नहीं, कहना है, मुझे अगर बताने का मन हो जाए ना, तो उसके बारे में बताने से पहले आरवी भाभी के बारे में बताना, बतीसी दिखाते हुए। ये सुनते ही अयांश का ध्यान पास ही टेबल पर बड़े कांच के फूलदान की ओर गया। अयांश ने उसे उठाया और विनित पर फेंक दिया। नहीं, विनित चिल्लाया। विनित नीचे बैठ गया और फूलदान दीवार से जा लगा। विनित कांच के टुकड़ों को देखते हुए, ओएमजी, बच गया, वरना मेरी खोपड़ी के भी इतने ही टुकड़े होते। थूक निकलते हुए अयांश ने अपने हाथ में पकड़ा कोट फेंका और विनित की ओर बढ़ते हुए बोला, वो तो अब भी होंगे, उन दोनों के बारे में तो बाद में जानना, पहले तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। विनित डरकर टेबल की दूसरी साइड भागते हुए, ये तो और भी मुश्किल है, 5 सालों में ना जान पाया तेरे बारे में, 50 साल लग जाएंगे तुम्हें समझने में। यार, मैं तो यूं ही कह रहा था, एक तो ना ये तुम्हारा गुस्सा बड़ा खतरनाक है। अब भाग क्यों रहे हो इधर उधर? अयांश विनित को पकड़ते हुए बोला, जो केबिन में इधर उधर भाग रहा था। यार माफ कर दे, जुबान फिसल जाती है मेरी, प्लीज देखो मारना मत, पक्का नहीं कहूंगा, जिक्र भी नहीं करूंगा उनका, आरवी भाभी को आरवी भाभी भी नहीं बोलूंगा, मेरा मतलब उस लड़की को कुछ नहीं कहूंगा, माफ कर दे, विनित लड़खड़ाती जुबान में बोला। अयांश उसकी ओर झपटने लगा कि विनित बचकर बाहर की ओर भाग गया और जाते जाते बोलकर चला गया, अब घर जा, कल ही शादी हुई है तेरी, तेरी बीवी इंतजार कर रही है, और बॉस, दोस्त की वाइफ भाभी ही होती है, तूने उसे वाइफ मान लिया तो मैंने भी आरवी भाभी मान लिया है। ये सुन अयांश दांत पीसते हुए केबिन से बाहर निकला, इधर उधर देखा तो विनित उसे नजर नहीं आया। अयांश लिफ्ट से नीचे पहुंचा, वहां भी उसे विनित दिखाई नहीं दिया। गुस्सा भी दिलाता है और अपनी बातों से जले पर नमक छिड़कने वाला काम भी करता है, ऐसा कमीना दोस्त किसी को ना मिले। अयांश बड़बड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। विनित ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठा था, लंबी सांस भरते हुए बोला, बच गया, वरना आज तो मैं भगवान को प्यारा हो जाता। थैंक्स गॉड, ऑफिस की सीढ़ियां कोई यूज नहीं करता है, अयांश मेहरा तो बिल्कुल नहीं, वरना ना यहाँ छुप पाता और पकड़ा भी जाता, फिर शेर का पंजा और मेरी गर्दन, मुंह से भूखते हुए। तभी विनित का फोन रिंग किया, कोई नोटिफिकेशन आया होगा। विनित ने कोट से फोन निकाला और फोन की स्क्रीन की ओर देखकर कहा, पुरानी मेल, क्रमशः।